फिर आयत 156 से 158 में क्या पता चला कि मौत तो आनी है, यानी अल्लाह की राह में मौत आ जाए, ईमान वालों के लिए ये बायसे रहमत भी है और मग़फ़रत का सबब है। अल्लाह के रस्ते की मौत दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर है। आप देखिए, कौन चाहेगा कि हॉस्पिटल्स में मरे, एड़ियाँ रगड़ के मरे, हादसों में मरे? मौत तो आएगी, तो मौत अच्छी आ जाए। और सबसे अच्छी मौत क्या है? अल्लाह के रास्ते की मौत, जो कि हर चीज़ से बेहतर है। इसमें आप देखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अल्लाह ने दोबारा फिर हौसले बुलंद किए कि देखो, तुम्हें इस रास्ते में जब निकलना है तो तुम अपने आप को अभी से मजबूत कर लो कि तुम्हें तो एक एक कदम पे अजर मिल रहा है। दुनिया की दौलत कमाना भी मुश्किल है, औलाद की तालीम भी मुश्किल है, क्या आसान है? आप देखिए, गलत काम करने लिए आराम से करते हैं, कई दफ़ा फिल्मों को पिक्चराइज करते हुए पहाड़ों से गिर जाते हैं। आज भी दुनिया में जिसने भी कुछ पाया, मेहनत से पाया, और वो मुसलमान, तुम्हें तो अल्लाह ताला वो दे रहा है कि जो दुनिया और आखरत में सबसे खूबसूरत चीज़ है। और खैरु मिम्मा यजमाउन का लफ्ज़ आयत 157 में क्या दिखाता है? दुनिया की हर चीज़ को एक पलड़े में डाल लीजिए और दूसरे में दीन हो तो ये उससे बेहतर है, यानी जो चीज़ें लोग अमूमन जमा करते हैं उन सबसे बेहतर चीज़ अल्लाह के रस्ते की जिद्दोजहद है। आयत 159 से नफ्स सल्लम की तरफ बात जाती है, गोया कि आप कह लें कि मीर कारवां के लिए हिदायतनामा है। गज़वे उहद में सहाबा कराम से चूँकि गलती हुई, इश्तिहादी गलती थी, तो डर हुआ कि अल्लाह के नबी उनसे नाराज़ ना हो जाएं, शायद उनको किसी बात में आप पीछे ना कर दें। तो अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से कह दिया, फ़बीमा रहमत मिनल्लाह लिन्त लहुम, आप बहुत नरम हैं। तो अल्लाह के नबी की खूबियाँ, बल्कि मैं इन आयात में एक टॉपिक देती होती हूँ, अच्छे लीडर्स की खूबियाँ। आपके लिए कहूँ तो अच्छी माओं की खूबियाँ, अच्छे बापों की खूबियाँ। आप किसी भी इंसान के साथ मामला करें ना, तो इन आयात को अपने लिए कायना बनाइए, क्या मैं सख्त मिजाज तो नहीं हूँ? याद रखिए, जो सख्त मिजाजी के साथ काम करेगा ना, लोग दीन से दूर हो जाएंगे। जो दीन की दावत देने वाला सख्ती से बात करता है, लोगों के अंदर गुस्सा आता है, रिजेंटमेंट आती है। नरम मिजाजी से लीजिए, अल्लाह के नबी ने दिलों को मोहा था। और फिर तवक्कुल की भी हकीकत इसमें समझ आती है कि हाथ पे हाथ धरने का नाम तवक्कुल नहीं है, बल्कि पूरे इरादे और जिद्दोजहद के साथ मुस्तकिल काम कीजिए और नतायज अल्लाह पे छोड़ दें, यानी डू योर बेस्ट and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. फिर फ़ैज़ आज़म तवक्कल अल्लाह से ये बात भी पता चल गई कि जब इरादा पुख्ता हो जाए किसी काम का तो फिर बदलिए नहीं। बहुत सारे लोग ढिलमिल यकीन होते हैं, इफ्स एंड बट्स में पड़े रहते हैं, एक कदम आगे फिर पीछे। जब आपने सोच लिया मैंने ये काम करना है तो फिर इसको करके रहिए। और इसी सारे में वशाविरहुम फिल अम्र से क्या पता चलता है कि मशवरा लेना चाहिए। कुरान पाक में एक पूरी सूरत है, सूरत शूरा। शूरा कहते हैं मशवरे को, यानी वन मैन शो इस्लाम में बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। तो मशवरे की सूरत में भी फैसला इस्लामी की आदत को करना है, और अल्लाह के नबी बहुत मशवरा करते थे। अल्लाह हमें भी इसी की तौफीक अता फरमाए। आयत 160 का एक पैगाम लीजिए कि फैसला कुन चीज़ अल्लाह की मदद है। जब अल्लाह की कहीं मदद आ जाती है तो वो काम फिर होके रहता है। और इसके बाद फिर आयत 161 से 163 को अगर आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और इखलास मुसल्लम है, यानी नफ्स सल्लम की दयानतदारी और इखलास, इसमें किसी को शक नहीं है। गज़वा उहद के बाद कुछ ऐसे हालात आए, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसमें एक कुछ चीज़ नहीं मिल रही थी, तो किसी के दिल में ख्याल आ गया कि शायद अल्लाह के नबी ने ले ली होगी। कुछ कहते हैं कि कुछ ने यह सोचा कि अल्लाह के नबी ने अभी सहाबा को दिल से माफ़ नहीं किया, क्योंकि उनकी गलती की वजह से आपको चोट भी लगी, तो ये सारी आयात उस पर उतरी कि नबी पे शक न करना। वमा काना लिन्नबी यही यहुल, कि नबी ख़यानत नहीं करते, ना दिल में किसी के लिए बुरी रखते हैं बात, ना अमल में रखते हैं। और आयत 164 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालेहीन की जमात कैसे तैयार की। आज एक अच्छे लीडर को अच्छे लोग क्यों मिल जाते हैं? इसलिए कि वो उस सारी खूबियों को जानता है जो दूसरों में होती है। तो इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रहमत करार दिया गया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। आप देखिए, हज़रत इब्राहिम ने दुआ की थी कि रब्बन वबस फ़ीहिम रसूलम, फिर दूसरे पारे में आपने देखा कि अल्लाह ने नबी को भेज दिया, इस बारे में भी आप देख रहे हैं कि नबी सल्लम के वजूद को इंसानियत पर एक एहसान करार दिया है, क्योंकि आपने लोगों को किताब पढ़कर बताई, लोगों का तस्किया किया, उनको हिकमत दी। तो आपके मेरे लिए नबी सल्लम का वजूद एक बहुत बड़ी रहमत है। कैसे सालेहीन की जमात तैयार की आपने, आपने लोगों का तस्किया और तरबियत कैसे की, उनको मोहब्बत देकर और उनको किताब से जोड़ा, हिदायत दी, तस्किया नफ्स किया। इसी तरह से इल्म और हिकमत, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से अजीम एहसानात हैं। आज आप भी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग रहें, तो आपको भी नबी सल्लम के उस उसवे पे अमल करना होगा। इसके बाद अब गज़वे उहद का टॉपिक रैप अप हो रहा है। आयत 165 से 168 में गज़वे उहद में शिकस्त की वजह और उसकी हिकमतों पे बात हो रही है। अवलम असाबत को मुसीबत, अल्लाह ताला कहते हैं जब भी कभी तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो याद किया करो, तुमने भी तो इससे पहले ऐसी कोई मुसीबत पहुंचाई थी। इशारा है बदर और उहद के जो मुख्तलिफ मामलात थे उसमें। हमें क्या इससे सबक लेना है कि क़्यादत की नाफरमानी का नतीजा शिकस्त की सूरत में निकलता है, मुसीबत और रुसवाई आती है। और सहाबे कराम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। फिर जंगी हालात में मोमिनीन और मुजाहिदीन का साथ ना देना और ला ताल्लुक रहना, ये निफाक और कुफर से कुर्बत की अलामत है। यानी अगर आज के दौर में इस्लाम को हमारी ज़रूरत है और हम कहते हैं नहीं जी हम तो अपने काम में मगन है, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, तो ये अपने आप को ख़तरे में डालने वाली बात है। फिर इसी तरह एक और लेसन है गज़वे उहद में उसकी शिकस्त के सबक से जो हमें बात मिलती है कि मुनाफिकीन ही अहले ईमान की पॉलिसीज़ को अपनी तखरीबी तनकीद का निशाना बनाते हैं। यानी जो काम नहीं करते ना वो तनकीद बहुत करते हैं, ये मुराद है इससे। हर बात में कहते थे अल्लाह के नबी की प्लानिंग ठीक नहीं थी, क्यों बाहर निकले, मदीना में ही रह लेते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुनाफिक मौत और हयात को अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में नहीं बल्कि ज़माने के हवादिस का नतीजा करार देता है। ना जाते तो ना मारे जाते, अच्छा घर में रहते तो नहीं। तो इधर से आपके मेरे लिए अमल का नुक्ता कि हमेशा तकदीर पे राजी रहिए। गज़वे उहद में चूंकि 70 लोग शहीद हो गए तो आयत 169 से 171 में शुहदा के लिए इनामात है। अल्लाह ताला ने उनकी खुशखबरियां दी कि वला तखसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाही अमवाता, यानी शोहदा को मुर्दा ना कहो, मुराद ये कि वो मिशन जिस पे वो मरे हैं वो जिंदा है। जिस्मानी तौर पे तो जाहिर है कि वो फौत हुए, उनकी बीवियां बेवा हो गईं, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी विरासत बट गई। मुराद क्या है कि उनकी रूहें जिंदा रहती हैं। और अहादीस से हमें मिलता है ये मुकाम कि बलखयान इंदा रब्बिहिम युरज़कून, अल्लाह शहीद को आलमे बरज़ख में भी जन्नत में ले जाता है। बस एक बात समझ लीजिए कि आम मोमिनीन मरने के बाद क़यामत तक का वक्त कब्र में यानी बरज़ख के आलम में गुजारता है, फिर बाद में जब क़यामत आएगी तब जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन शहीद को अल्लाह ताला किसी सब्ज़ परिंदे के कालेब में ढालकर जो भी उसका मुकाम होगा उसको जन्नत में भेज देते हैं। अब बताइए कितना लोग डरते हैं कब्र से, अजाबे कब्र। तो अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से बचा लेता है जब हम उसके रास्ते में काम आ जाते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ क्या पता चली कि जो लोग अल्लाह के पास चले गए वो इस दुनिया वालों से तो अच्छे ही रह गए ना। और फिर एक और बात है कि हर नेमत का सरचश्मा अल्लाह की तरफ है, क्योंकि बि नेमत मिनल्लाह व फ़ज़ल, अल्लाह की नेमत और उसके फ़ज़ल से। यानी जब अल्लाह किसी को कोई नेमत दे देता है तो उसके बाद वो नेमत कम नहीं होती। फिर उसके बाद शहीदों को खौफ और गम से पाक ज़िंदगी मिलेगी। ज़ख्मों से चूर सहाबा कराम की जुर्रत और बहादुरी का तस्करा गया रहा है। गज़वे उहद हो गई, दुश्मन भाग गया, अब मुसलमान तो बहुत ही तकलीफ़ में थे ना। देखिए ना, फतह हो जाए तो इंसान कामयाबी के नशे में ही थकता नहीं है। अब सारा दिन लगाकर एक दावत तैयार करती हैं, थकी हुई है जो भी है, लेकिन दावत बहुत अच्छी रही, मेहमान बहुत खुश गए, खाना बहुत अच्छा था, आपको भी खुशी मिली। तो रात को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना, लेकिन खुदा ना खास्ता मेहनत भी हो और नतायज अच्छे ना निकले तो इंसान टूट जाता है। उहद की जंग बिल्कुल ऐसी ही जंग थी। और जब जंग ख़त्म हुई दुश्मन भाग गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि कहीं वापस ना आ जाए। अबू सुफियान अपने काफ़िले को लेकर वापस ना, यानी इसके अंदर कई वाक़यात आते हैं। अगर आप आयत 172 से 175 की तफसीर पढ़े ना, तफासीर में, तो एक तो हमराउल असद का वाक़या इसमें आता है, बाद इसमें बदरे सुगरा कहते हैं, लेकिन आपके मेरे लिए जो इसमें बात है वो क्या है कि सहाबा के जज्बे बहुत पक्के थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि हम वापस जाएंगे दुश्मन का पीछा करने, सब चल पड़े। हमारे खुदा न खास्ता कोई एक फौत हो जाए, हमारे तो महीनों तक उसका शोक मनाया जाता है। थकन भी थी, तकलीफ भी थी, जख्मी भी थे, सब कुछ था घरों में, लेकिन अल्लज़ी नस्तजाबु लिल्लाहि व रसूली मिन बादी मा असाबहुमुल कर। जरा अपने ऊपर लीजिए, हमें मौलवी साहब एक सपारा पढ़ाने के बाद कहें कि चले जरा आज की तरावी में अगला भी सपारा पढ़ लें, तो कितने बैठे रहते हैं? चले आज हम इस पारे के बाद अगला भी शुरू कर लेते हैं, तो कितने बैठे रहेंगे? हम तो एक दो मिनट आगे पीछे होने से बेचैन होने लगते हैं। साहबा जख्मों में है, चूर है, तकलीफ में। अल्लाह के नबी ने कहा अभी नहीं, हथियार उठाने चलो चलते हैं। सब ने पीछा किया लश्कर का, और ये गज़वे बदर के बाद का वाक़या ज़्यादा सही रिवायत से मिलता है। और अबू सुफियान वाकई वहाँ जाकर सोचा कि हम वापस ज़रा हमला ना करें। फिर कुछ ऐसा मामला हुआ कि उसने किसी शख्स के ज़रिए झूठी खबर फैलवाई कि मुसलमानों को डराने के लिए, कि अबू सुफियान बहुत बड़ा काफ़ला लेकर आ रहे हैं। और मुसलमानों ने क्या कहा? हसबुनल्लाह व नेमल वकील। अल्लाह ने उनके जुमले लिख दिए कि वो, उनके हौसले नहीं टूटे। फन कलबू भी नेमत मिनल्लाहि व फ़ज़्ल, अल्लाह ने उनको नेमतें भी दे दी। यानी साहबा के हौसले नहीं टूटते थे, उन्होंने वहाँ जाने तक पूरी साबित कदमी दिखाई, दुश्मन को हमला करने का मौका ही नहीं मिला, वो चला गया, और सारा माले गनीमत मुसलमानों को मिला। क्या पता चला कि बातिल अक्सरियत की मादी ताकत और धमकियों से मुत्तकी मुसलमान मरूब नहीं होते, बल्कि इनके ईमान में इजाफा होता है। जख्मों से चूर सहाबा कराम की जुरत और बहादुरी का तذکرہ है। क्या पता चला कि आज अगर हम मुसलमान घर बैठे किसी के F-16 से डरे, फलाने ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। आज भी आप देखिए कि हर दौर में गैर इस्लाम के पास ही ज़्यादा असलहा होता है, तो मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं, इसमें ये पैगाम है। फिर इसी तरह वक़ालो हसबुनल्लाह व नेमल वकील, इससे क्या पता चलता कि अल्लाह तआला की तरफ से अहले ईमान की मुकम्मल और बेहतरीन सरपरस्ती पर मोमिनीन को यकीन है। यानी हमारा अल्लाह हमें तनहा नहीं छोड़ेगा, हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह उसको जानता है। तो ये हमराउल असद जंग की तरफ इशारा करके क्या बताया, कभी कभी मेहनत के बगैर भी बंदे को माल मिल जाता है। इधर कुछ नहीं किया, कोई जंग नहीं हुई, दुश्मन आया भी नहीं, लेकिन माले गनीमत बहुत सारा मिल गया। तो इस जंग में बिला मुशक्कत कामयाबी का राज क्या था कि इस दफ़ा सब मुखलसीन थे, गैर मुखलस पीछे बैठे रहे। लो जी अभी तो एक जंग नहीं ख़त्म हुई तो हम क्यों जाएं? देखिए कैसी तरबियत करता है कुरान। आप अंसारुल्लाह, आपको एक टारगेट से अगला टारगेट मिला, अब कौन जाएगा? जो बड़े पक्के ईमान ना लोगों के, अच्छा अभी पढ़ लिए, चलिए अब हम अगली जगह भी उठ के चलते हैं, अच्छा घर जाके भी क्या करना है, अच्छा सोना ही है ना, अच्छा तो कोई नहीं। तो आप देखिए कि दूसरी दफ़ा जो काम होता है ना, वो बड़े ईमान से होता है। अल्लाह ने उसके लिए कहा अच्छा तुम आए थे, अब तुमसे काम नहीं कराना, तुम्हें हमने सिर्फ चीज़ें बांटनी हैं। ये बड़ा खूबसूरत नुक्ता, अल्लाह करे कि हम दीन का ये मिजाज समझें। इस पे आगे फिर देखिए थोड़ी सूरत आगे बढ़ती है। 176 से 178 में कुफार का बुरा अंजाम बताया जा रहा है। वला यखजुन कल्लजीना युसारिऊन फिल खैरात। क्या पता चला कि ये जो दौड़ धूप करते हैं ना कुफर में, आप ना गम ज़्यादा हुआ करें, नॉन मुस्लिम ने ये कर दिया, वेपन्स बना लिए, एटॉमिक वार हो जाएगी, नहीं यदुरुल्लाह शैया, ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या पता चला? वला यखसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरल लिअन्फुसिहिम। काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझें, ये तो अल्लाह की तरफ से सजा। यानी अल्लाह ताला इनके गुनाहों की लिस्ट को लंबा करना चाहते हैं, इसलिए इनको ये मौका दे रहा है कि तुम और भी मुसलमानों के खिलाफ हो जाओ, अल्लाह ताला उनके साथ है। फिर आगे 179 से पैगाम क्या मिलता है कि आजमाइश मोमिन और काफिर को अलग कर देती है। मा कान अल्लाहु लियज़रुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह आजमाइशों की भट्टी में मुसलमानों को डालता है ताकि उनके दोस्त वाज़े और दुश्मन जलील हो जाएं, साबिर मुनाफिक से अलग हो जाएं। जिस तरह उहद में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को आजमाया, जिससे इनके ईमान, सब्रो सुबात और जज्बे इताअत का इजहार हुआ, और मुनाफिकीन ने अपने ऊपर जो निफाक का पर्दा डाल रखा था वो बेनकाब हो गया। तो क्या पता चला कि कभी कभी अल्लाह ताला इस तरह के हालात इसलिए भी बनाता है कि खरे और खोटे का फ़र्क पता लगे। अब जब जंगें होती थी तो पैसा भी लगता था, जब पैसा लगता है तो बकील लोग सामने आते हैं। तो आगे आयत 179 में बुखल की बात है, यानी पैसा है, माल है, लेकिन खर्च ना करना। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि बुखल अपने ज़कात के माल को भी ना अदा करना, यानी अल्लाह का हक भी उस माल में से ना देना। तो क्या पता चला कि बुखल को अपने हक में बेहतर समझना गुनाह और खुद फरेबी है। आज बहुत सारे लोग पैसा बचाते हैं और बाद में फ़ख्र करते हैं, देखा मैंने मासी को थोड़े से पैसे दिए, इतना काम करा लिया, तुम क्यों कराती हो, तुम ड्राइवर को इतना देती हो, मैं तो इतना। तो इसको अल्लाह ताला कहते हैं अपने हक में अच्छा ना समझो, क़यामत के दिन ये गले का तौक होगा। फिर इसके बाद आयत 181 से 184 में यहूद की कुछ गुस्ताखियाँ और झूठ हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के बारे में देखिए इन्होंने क्या जुमला बोला, इन्नल्लाह फ़कीर व नहनु अग़निया। नऊज़ुबिल्लाह, जब आयत नाजिल हुई ना, मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अबू दहदा का अमल तो आप पीछे सुनकर आए हैं, लेकिन यहूद ने कहा अच्छा तुम्हारा अल्लाह फ़कीर हो गया इसलिए पैसे मांगता है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इनके इस जुमले को भी लिख लिए और हम क़यामत के दिन इनको पकड़ेंगे। क्या पता चला कि बातिल कुव्वतें हमेशा हक को गलत साबित करने की कोशिश करती हैं, ऐसी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। और आयत 185 में वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे की है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेबे सूदो जिया ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी दुनिया में सब कुछ भी मिल जाएगा तो भी धोखा है, असल बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरे किए जाएं, असल कामयाबी जहन्नुम से निजात में है। फिर आयत 186 में अब आप कह लीजिए कि सूरत अपने खात्मे की तरफ आ रही है, मुखालफत के जवाब में सब्र और तकवा की नसीहत है, और मुसलमानों को एक पैगाम दिया जा रहा है कि लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हें ज़रूर आजमाइशें आएंगी, कभी माली मामलात में आएंगी, कभी जानी मालों में आएंगी, अहले किताब से तुम रोज़ नई नई बातें सुनोगे, मुशरिकीन भी तुम्हें तकलीफ़ देंगे, लेकिन व इन तस्बिरू व तत्तकू, दो हथियार लिख ले मुसलमान के, सब्र और तकवा। सब्र क्या है? डोंट बी रिएक्शनरी। और तकवा क्या है? कि अपने दीन को और मजबूती से पकड़ लो। फ़इन नज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत ही अज़म और बहुत बड़े काम हैं, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर आयत 187 का मैसेज लिखिए, अहले किताब की अल्लाह ताला की किताब से बेवफाई, यानी इन्होंने अपनी किताबों को छुपाया था। अल्लाह ने तो क्या कहा था कि तुम लतुबैयिनुन्नहु लिन्नास, अपनी किताबों को आम करोगे, वला तक तुमू ना हो, और छुपाओगे नहीं। अफसोस की बात है, आज उम्मत मुस्लिमा ने भी इस किताब को इतना आम नहीं किया जितना करने की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला आपसे मुझसे ये खिदमत ले ले। फिर आयत 188 से 189, तारीफ और तहसीन की ख्वाहिश अजाब से दोचार करेगी। यानी कुछ लोग हैं करते धरते कुछ नहीं, लेकिन चाहते हैं कि तारीफ़ें बड़ी हों। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना युहमदू बिमा लम यफ़लू। देखिए, कुछ काम करके भी तारीफ़ कराना अच्छी बात नहीं है, लेकिन काम ना करके तारीफ़ कराने का शौक़ तो बुरा है। मसलन समोसे बनाए आपकी बहू ने और आप पेश कर रहे हैं कि मेरी बेटी ने बनाए हैं, तारीफ़ें बेटी की हो जाए, ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है ना। तो क्या पता चला किसी ना करदा अमल पर तारीफ हो, आपकी बड़ाई बयान की जाए, तो ये बहुत ही बुरी बात है। यानी ये तो कह लीजिए कि अजाब से दो चार करने वाली बात है।